यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्य तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् नमामदेवं भुवनेशमीड्यम् तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही इंद्र अविनाशी बृहस्पति आर्यमा तुम ही हो तुम ही मित्र वरुण सुख राशि ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक संवारा है तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है हे सब जग के प्रकाश के स्वामी जब यह सब जगदम का देना हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना अगर भगवान के चरणों में तेरा प्यार हो जाए तो इस भव सिंधु से तेरा ये बेड़ा पार हो जाए ये मानुष का जन्म तुझको मिला अनमोल बंदे तू कर भगवान का सुमिरन तेरा उद्धार हो जाए तू बंदा है तो बंदे ईश्वर की बंदगी कर ले तेरा हीरा जन्म ऐसे ही ना बेकार हो जाए जीवन की क्षण भंगुर कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली मलयाचल की मंद सुगंध समीर समय पे मिली न मिली कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली जप ओम नाम री रसना फिर अंत समय में हिली न हिली इस आर्य समाज के भावी पहले और अब आने वाले समय में होने वाले आचार्य श्री प्रवीण जी गुलाटी उपस्थित भद्र पुरुषों माताओं बहनों आज के दोनों तीनों यजमान परिवार आप सभी मिलकर बोलिए सखे बोलिए सखे मां ऋषामा वयम तव पूरे वेद मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपसे बुलवाया है सामवेद का मंत्र है उसका यह एक छोटा सा खंड है टुकड़ा है पूरे मंत्र में चार बातें कही है पहली बात है इमम स्तोम मरहते जात वेद से कि हमारी जो स्तुतियां हैं वो केवल और केवल उस प्रभु के लिए हो हम दुनियादारी के चक्कर में पड़कर के जिनकी स्तुति नहीं करनी चाहिए उनकी भी ना करते बैठे। स्तुति करनी हो, और ये स्तुति शब्द भी जो है पहले से था, लेकिन ये महर्षि दयानंद जी की कृपा है कि उन्होंने तीनों शब्दों को क्लियर कट हमारे सामने रख दिया। पहले कहां पता था, सभी गडमड हो रहा था। ऋषि दयानंद ने पहले सबसे पहले कहा कि देखो भाई, स्तुति अलग है, प्रार्थना अलग है, उपासना अलग है। नहीं तो अपने समाज को तो इसका कुछ अंदाजा नहीं था, कुछ पता नहीं था। वेद मंत्र कहता है कि आपकी जो स्तुति है, स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति का अर्थ होता है गुणों का वर्णन, बड़प्पन का वर्णन। स्वामी सत्य प्रकाश जी कहते हैं, भक्त वो होता है भक्ति करने से पहले कि उसके गुणों से वो प्रभावित हो जाता है कि वाह वाह, जिधर देखता है उसको देखने का प्रयास करता है, और देख करके जब अजब दिखाई देता है। मैं ह्यूस्टन के तीन चर्चों में जाता हूं, एक लेकवुड चर्च, एक यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, और यहां का एक बाजू का चर्च। एक जगह एक पादरी हमसे टकरा गया, बोलते बोलते बात निकली मिरेकल्स की, तो मेरे मुंह से सीधा निकल गया कि ओनली गॉड कैन डू मिरेकल्स, वी कांट डू एनी काइंड ऑफ मिरेकल्स, इट्स बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू डू एनी काइंड ऑफ मिरेकल, मिरेकल तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा दुनिया को देखो, सब तरफ दिखाई देते तो मिराकल ही मिराकल दिखाई देते हैं। मनुष्य जो करता है वो तो उसके पीछे तो प्रॉपर थियरीज, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते दिखाई देते हैं। अगर कोई मिराकल्स करता है, अगर कोई चमत्कार करता है, तो प्रभु करता है। तो स्वामी सत्य प्रकाश जी कहते हैं कि जो भक्त होता है, जो साधक होता है, दुनिया को इन बाहर की नहीं अंदर की आंखों से जब देखता है, और हर जगह उसको दिखाई देता है कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तब कहता है कि वाह वाह प्रभु, कमाल है। मैंने सूखा सूखा भूसा खा करके, सूखी घास खा करके, सूखी कड़बी खा करके गाय जो है कैसे बढ़िया अमृत तुल्य दूध देती है। हम इसको एनालाइज तो कर सकते हैं कि दूध में क्या क्या है, कितना कितना है, लेकिन ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते आप कभी कि इधर से हम सूखा घास डालें और सूखी भूसी डालें, सो तमाम चीजें जो गाय खाती है डालें और इस तरफ से दूध आ जाए, ये हमारे बस की बात नहीं। दिस इज रियली ए मिराकल जो परमात्मा कर सकता है। मैंने उस पादरी को कहा कि ऐसा मनुष्य कोई करता हुआ दिखाई दो, इतिहास की बातें, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने किया था, वो छोड़ दो, आज कोई कर सकता हो मिराकल, कोई चमत्कार कर सकता है तो प्रभु कर सकता है। वेद का मंत्र कहता है, ए मनुष्य, अगर आपके पास कोई स्तुति के सुमन है, कोई स्तुति के गुच्छ है, स्तुति के पुष्प है, तो उस परमात्मा के चरणों में ही अर्पण कर दे। क्योंकि जिस किसी की आप स्तुति मनुष्यों में करेंगे, वो आज प्रसन्न है, कल नाराज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आज उनका मूड अच्छा है तो दो शब्द अच्छे बोलेंगे, कल मूड नहीं तो क्या करेंगे? एक उर्दू के कवि ने तो कह दिया, मकामे शुक्र है सूफी, खुदा के हाथ है रोजी, अगर ये हक भी इंसान को मिला होता न जाने क्या होता। ये हवा है, ये पानी है, ये रोटी है, उस प्रभु के हाथ में है, इसलिए सभी लोग थोड़ा क्यों ना हो, आधा भूखा पेट क्यों ना हो, लेकिन खाते हैं कुछ ना कुछ। अगर केवल मनुष्यों की आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर, और उनको स्तुति करने के बाद वो कुछ खिलाने वाले हो, ऐसा मामला होता तो न जाने हजारों लाखों लोग भूखे भूखे मर जाते। क्योंकि मनुष्य कब नाराज हो और कब प्रसन्न हो क्या पता है भाई? अभी उसका मूड है प्रसन्न है, अभी क्षण भर में नाराज हो सकता है किसी बात पर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे मालिक हो, चाहे नौकर हो, मनुष्य तो मनुष्य है ना। अभी ठीक था, अभी गड़बड़ हो गया, एक दूसरों के चेहरे को देखकर उसके मूड को भांपते भांपते बोलना ही मुश्किल हो जाता है। अभी मूड ठीक था, अभी क्या हो गया? नहीं होता क्या ऐसे? हमारे घरों में रोज तो होता है ऐसे, पति देव का मूड संभालते संभालते पत्नी देखते थे, उनकी आंख उनके चेहरे की तरफ देखते देखते परेशान होते कि अब पता नहीं कैसे मूड हो जाए, गड़बड़ हो जाए कभी। पति देव जो है पत्नी के मूड को देखते देखते और बोलते बोलते परेशान कि कभी क्या पता मूड बदल जाए तो मामला सब गड़बड़ हो जाए। वो पीछे चिन्मय मिशन में जेपी वासवानी जी आए थे, नाम सुना है ना, बड़े अच्छे संत है, बहुत ही मैंने सेंटलीनेस उनके चेहरे पर से टपकता है, बहुत अच्छी और बहुत प्यार भरी बातें, बहुत थोड़े में संक्षेप में सुंदर उपदेश करते हैं। हमने टीएल वासवानी जो थे, जिन्होंने महर्षि दयानंद का चरित्र लिखा है, वो कहते मैं आर्य समाज हूं नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद से मैं भारी प्रभावित हूं। मैंने उन्होंने साफ लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ हिज बुक, उन्होंने पुस्तक लिखी टॉर्च बियरर महर्षि दयानंद पर, उन्होंने लिखा कि मैं आर्य समाज वगैरह हूं नहीं, लेकिन मैं ऋषि दयानंद के जीवन से भारी प्रभावित हूं। बस उनके ये भतीजे हैं जेपी वासवानी जी, तो उनकी किसी ने पुस्तक मुझे भेंट कर दी। मैं पुस्तक देख रहा था तो जेब में तो पैसे लेकर गया नहीं था, तो किसी देवी ने कहा चाहिए पुस्तक चाहिए, मैंने कहा ये अच्छी लग रही तो बोले ले लो आप, हम पेमेंट करते हैं $10-12 उस देवी ने दी। उसमें एक मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो उसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति मुंबई में सुबह अपने काम से अपने घर से काम को जाता था, काम से घर को जाता था, बहुत लंबा पूरा का पूरा इधर अंधेरी में वगैरह कहीं रहता होगा, और मूल मुंबई में जाते जाते 2 घंटे ट्रैफिक के जाने में, 2 घंटे आने में, और ट्रैफिक जाम होता था बीच बीच में, परेशान परेशान दुखी दुखी होता था, और हमेशा दुखी रहता कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता था हमेशा, जब ट्रैफिक बंद 10-12 घंटे की ड्यूटी और फिर 4-2 घंटे जाने आने का, तो थक जाता था बेचारा। एक बार जब ट्रैफिक जाम सामने आया और एकदम गाड़ी खड़ी करने में, हे प्रभु वेर आर यू गॉड, व्हाई डोंट यू कम एंड हेल्प मी, ऐसा मैंने बहुत ही क्या कहने, बहुत अर्नेस्टली अत्यंत तीव्र भावनाओं से प्रार्थना की, और उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है सम हाउ एंड गॉड केम टू रेस्क्यू हिम, परमात्मा आकर कहा कि मेरे भक्त कितने तीव्रता से पुकारते हो, इतनी तीव्रता आ गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका, बोलो तुम्हारी मैं क्या सहायता करूं। तो उसने कहा प्रभु मैं कितना परेशान हो गया, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कांट यू मेक सम प्रॉपर रोड, यू नो कितने परेशान है, 8-10 घंटे की ड्यूटी करता हूं, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, कुछ उपाय करो प्रभु। परमात्मा ने कहा भले आदमी, अगर मैं आ ही गया तो कुछ वर्थ वाइल मांग लो, तुम रोड ही क्या मांग रहे हो। कहला नहीं मैं रोज इससे बहुत परेशान होता हूं, कुछ मेरी सहायता करो। परमात्मा ने नहीं मैं सच कहता हूं, फिर एक बार चांस देता हूं, देने को तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम कुछ और खास ही मांग लो। उसने कहा अगर खास ही देना हो तो सचमुच मुझे एक इससे भी बड़ी व्यथा मेरे हृदय में है। बोले क्या? बोले वाह सच्ची बात यह है कि मैं अपने पत्नी की तरफ देख देख के परेशान होता हूं कि कब खुश हो जाए कब गुस्सा हो जाए, कब खुश हो जाए कब गुस्सा हो जाए, अभी ठीक थे अब गुस्सा हो गए, अभी गुस्सा हो गए अब ठीक हो गए। हे प्रभु कभी प्यार करती है तो इतना करती है कि बस, मैं तो उस प्यार करते तब मुझे ये लगता कि अरे पहले जो गुस्सा कर रही थी वो सही था कि ये सही है। हे प्रभु अगर प्रभु आपको करना है तो फिर मेरा वो महत्व का है। तो परमात्मा ने कहा नहीं नहीं भक्त वो पहले वाली ही बात बताओ, मेरे लिए ये नहीं समझ पाना मुश्किल है, वो पहले वाली कर देता हूं जो कुछ है। वेद मंत्र कहता है इमम स्तोम मरहते जात वेद से, वेद मंत्र कहता है हे मनुष्यो आपकी जो स्तुति है वो अलग सी खास उसके लिए होनी चाहिए। जात वेद से, जो जाते जन्मे हुए सब लोगों को, तमाम ही नोज ऑल द थिंग्स एंड बीइंग्स, वो सारे प्राणियों को और सारे वस्तुओं को अंदर और बाहर से जानता है, हमारी स्तुतियां केवल उसके लिए हो। मनुष्य जो है अपने छोटे बड़ों की स्तुति करता करता परेशान, जो एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयर की स्तुति करते करते परेशान। शास्त्र में लिखा है वाता तपक क्लेशान सहनते ये मूढ़, मने लोग अगलों की मने स्तुति करते करते उनके मूड को भांपते भांपते जिस प्रकार सर्दी को गर्मी को बरसातों को सहन करते हैं, अगर कहीं उससे उसका अंश भी कहीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना शुरू करते हैं तो वही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो परम कारुणिक है, ही इज द ओशन ऑफ मर्सी। वो तो आपको थोड़ी से आपके हृदय के भावों को समझ लेगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। वो तो अनचेंजेबल है ना, मनुष्य तो चेंजेबल है। जैसे बरसात की घटाएं हैं, अभी आ रही है अभी गायब हो गई है, अभी वर्षा हो रही थी अभी बंद हो गई है। मनुष्यों के मूड तो ऐसे, क्योंकि हम सभी जो है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं हम जो हमारा जो नेचर है बेसिकली ये सत्व रज और तम तीनों से बना हुआ है ना। जब सत्व गुण प्रधान है तो वी आर ऑल जस्ट लाइक गॉड्स, हम ईश्वर की तरह है, बस देवताओं की तरह है, हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और रजोगुण हावी हो जाए तो दुनिया भर की चंचलता आ जाएगी, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये करें वो करें वो करें वो करें, न जाने मैंने शरीर भले ही बैठा हुआ लेकिन मनी राम कहां कहां घूमते हुए आए, सच्ची बात। और कहीं तमोगुण हावी हो जाए तो बस सोने को ही दिल करेगा, पड़े रहने को दिल करेगा, लेटे रहने को दिल करेगा। और ये इतना जबरदस्त है कि अभी सत्वगुण था अभी तमोगुण आ जाएगा, अभी रजोगुण आ जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं चलता मनुष्य। तो ऐसे जिसका नेचर ही सत्व रज और तम से बना हुआ है, और कैसे कैसे ये सत्व रज तम ये तीनों हमारे में है, सदैव है, जैसे वात पित्त और कफ ये तीनों हमारे में होते हैं, लेकिन जब कोई प्रीडोमिनेंट हो जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। क्यों जी? 40-50 वर्ष के बाद क्या होता है? वात प्रीडोमिनेंट हो जाता है। पहले भी था शरीर में, लेकिन पित्त और कफ के तुलना में समान था। जैसे ही वात बढ़ गया, दर्द होना शुरू हो जाता है। वात पहले भी शरीर में था, है ना? बचपन में कफ प्रधान होता है, युवावस्था में पित्त प्रधान होता है, और जैसे 40-50 की आयु हो जाए वात प्रधान होता है। वो तीनों हमेशा ही शरीर में रहते हैं, लेकिन जब जो प्रधान होता है अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। सच्ची बात, ऐसे सत्व रज और तम इन तीनों से बना हुआ मनुष्य जब जो प्रधान होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो ऐ मनुष्य, ऐसे तीन गुणों से जो अतीत है, इनसे जो परे हैं, जो सदा एक रस रहता है, इमम स्तोम मरहते जात वेद से, तू उसी की स्तुति कर, है ना? जो अपने कबीर जो थे उन्होंने लिखा है, काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ए बावलो, अरे गाय यहां है अमृत की तरह दूध देने वाली, और तुम भेड़ों बकरियों के पीछे घूम रहे हो दूध निकालने के लिए। काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे, है ना? उसकी उसका ही दूध का आनंद ले लो। तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की, रामचरित मानस की रचना की, और अकबर को जब यह पता चला कि बहुत सुंदर काव्य रचते हैं, बड़ा सीधा सच्चा सिंपल शब्द है रामचरित मानस में, बिल्कुल दिल को छू जाते हैं, दिल को छू जाते हैं। अगर कोई चौपाई पढ़ो ना, आह आनंद आ जाता। अभी अभी ये देवियां सभी गा रही थी, कितना अच्छा लग रहा था ना। हमारा प्रवचन उतना नहीं हृदय को स्पर्श कर, लेकिन जो गीत है वो बिल्कुल हृदय को छू लेता है। जब तुलसीदास जी को कहा कि भाई अकबर ने संदेश भिजवाया कि हमारे भी प्रशस्ति में कुछ कुछ कहो महाराज आपके इतने सुंदर काव्य में, तो उन्होंने कहा नहीं, जिस लेखनी ने राम के गुण गाए वो लेखनी अब और किसी का वर्णन नहीं कर सकते। इमम मरहते स्तोमम जात वेद से, ए मनुष्य आप अपनी स्तुतियां उस प्रभु के लिए अलग रख दो, बस उसी के लिए रख दो, बाकी छोड़ दो। महर्षि दयानंद बरेली में अपने व्याख्यानों से अमृत वर्षा कर रहे थे, और वहां एक कमिश्नर भी आया था सुनने के लिए, अंग्रेज कमिश्नर सुनने के लिए आया था। वो बड़ा आश्चर्यचकित होने लगे, और उनको मालूम था स्वामी जी महाराज को कि ये कमिश्नर मेरे सामने बैठा हुआ है जो सुन रहा है। और स्वामी ने उसके सामने बड़े ही सहज सीधे सच्चे शब्दों में ईसाई मत की आलोचना समालोचना की। स्वामी तो ऐसे थे कि वो जो सत्य सत्य है सामने प्रकट करके रख देते थे। तो कमिश्नर ने उनको तो नहीं, या उस कमिश्नर को मन में विचारा है कि जब मेरे सामने ये व्यक्ति ये साधु इतना सीधे दबंग रूप में जो बात कह सकता है तो पीछे क्या करता होगा। और कमिश्नर ने अपनी नाराजी स्वामी जी पर प्रकट की, ये कमिश्नर आए हैं आपके व्याख्यान सुनने के लिए, भारत में साधुओं की क्या कमी है, हजारों लाखों साधु हैं, और कमिश्नर आता है तो कोई उसका मायना है, और वो आराम से उनके मत के विरुद्ध बोल रहे हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी को जब ये बताया लोगों ने कि कमिश्नर आए हैं, वो नाराज हो रहे हैं, तो स्वामी जी ने एक ही बात कही, भैया हम तो वो सबसे बड़े कमिश्नर की बात मानते हैं, दुनिया के कमिश्नरों का हमें क्या लेना देना है ना, हम तो एक ही बात मानते हैं जो सबसे बड़ा कमिश्नर है, कमिश्नरों का कमिश्नर, राजाओं का महाराजा है, हमें इन कमिश्नर हम किसकी किसकी माने, किसकी किसकी सुने, हम तो बस एक परमात्मा की बात मानते हैं, उसी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने काम किए जाते हैं, कोई चाहे नाराज हो चाहे कोई प्रसन्न हो जाए। वेद मंत्र कहता है इमम स्तोम मरहते जात वेद से, हमारी स्तुतियां ऐ मनुष्य केवल उस परमात्मा के लिए। वो मुझे दो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है, वो मुश्किल ये है कि मेरे प्रवचन में गीत होते हैं, कुछ लोग कहेंगे तो क्या हो रहा है। न गाया ईश गुण माया के गुण गा, या तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भा, या तो क्या भाया। अरे बावले आदमी, तूने ईश्वर का गुण न गाकर माया के ही गुण गाता रहा तो क्या गाया, और पुण्य तुझे अच्छा नहीं लगा और केवल पाप ही अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, थू तेरी अच्छाई पर लगने पर भी, है है ना। अगर अच्छा ही लगना था तो ईश की ही गुण गाता, और भाना ही कुछ था तो पुण्य ही भा लेता भले आदमी। भाया तो क्या भाया, पाप भाया तुझे। कवि ने पंडित प्रकाश चंद्र जी बड़े वो कवि थे, बड़े शुरू शुरू के दौर में बड़ी सुंदर, मतलब उनके कहने का जो भाव है वो भी बड़ा सख्त भाव है, लेकिन शब्द बड़े मीठे हैं, है ना। सुंदर शब्दों में बहुत अच्छा भाव उन्होंने प्रकट किया है कि मनुष्य जो है, इमम स्तोम मरहते जात वेद से, मनुष्य अपनी स्तुतियां उसे कहे भाई, स्तुतियां कर करके फिर प्रार्थना की ओर चला जाएगा। जब आपको हर जगह उसकी महिमा दिखाई देगी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। प्रभु मुझे तो जहां हर जगह तू दिखाई देता है, सच्ची बात है। केवल पेड़ को देखो, पौधों को देखो, इन प्राणियों को देखो, पशुओं को देखो, आकाश को देखो, चंद्रमा को देखो, वो नजर आता है। अगर सचमुच उस हृदय से देखो, उस दृष्टि से देखो तुम। वेद की अगली बात है, प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो, प्रभु की व्यवस्था को समझो। इन आंखों से नहीं दिखाई देगा कछु, क्यों जी? इन आंखों से कछु नहीं दिखाई देगा, अंदर की आंखों से, बाहर की आंखों से। ये तो चमड़ी की आंखें हैं, चमड़ी को ही देखती हैं। अंदर की आंखें वैज्ञानिकों को, जिनको हम आज वैज्ञानिक कहते, साइंटिस्ट कहते, प्राचीन भाषा में उनको हम ऋषि कहा करते, क्यों जी? वैज्ञानिक भी जो है वो अंदर की बात देखता है। ये जो यह घटना हो रही है, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं, जो नियम काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो वहां चला जाता है। ऋषि भी तो यही कहते थे, ऋषि के लिए कहा है, ऋषिर दर्शनाथ, वन हु कैन सी बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, दैट वॉज ऋषि। जो समय से परे की बात देखता था, जो देश काल परिस्थिति के परे की बात देखता था, उन्हें ऋषि कहलाया जाता था। आज के वैज्ञानिक उस समय के ऋषि, आज के वैज्ञानिक बाहर के प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं, और उस समय के वैज्ञानिक अर्थात ऋषि वो अंदर की प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे। मानते कि नहीं मानते? इसलिए उनको ऋषि कहते थे, इनको वैज्ञानिक कहते हैं, है दोनों एक ही कैटेगरी के। ये बाहर की विज्ञान के ऋषि है, वो भीतर की विज्ञान के ऋषि थे। वेद मंत्र कहता है उसकी व्यवस्था को देखो अंदर की आंखों से, बाहर की आंखों से नहीं समझ में आए। आज का सारा पढ़ने वाला वर्ग और पढ़ाने वाला वर्ग बाहर की बातों को पढ़ाता है, बाहर की आंखें खोलने को बोलता है, अंदर की नहीं। और हमारे ऋषि कहते हैं, खोलो ज्ञान की आंखें खोलो, देखो जी देखो भालो, मन मत भूलो प्रभु को मत भूलो, मन मत भूलो प्रभु को मत भूलो। सच्ची बात ये, ज्ञान की आंखें खोलो बस। अरे भाई, विद्यालय में बच्चों को भेजना किस लिए है ना? ज्ञान की आंखें खोलने के लिए। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही वो महत्व की नहीं है, सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, क्यों जी? सोचना कैसे है उसको सीखने के लिए विद्यालय में भेजा जाता है। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय कैसे करना है, इसको सीखने के लिए भेजा जाता है। बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन, चाहे इतिहास की हो चाहे भूगोल की हो, बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कांट बी सेट एज नॉलेज। वास्तव में ज्ञान वो होता है जो सीखना सिखा दे, व्यवहार करना सिखा दे, समझना सिखा दे। समझ नहीं पड़ी तो कुछ नहीं फायदा। तो सच्ची बात यह है, वेद मंत्र कहता है कि प्रभु की न्याय व्यवस्था को देखो। लोगों की एक शिकायत रहती है, मालूम है क्या शिकायत रहती है, कि अरे सब सब गड़बड़े हो रही है, परमात्मा रोकता क्यों नहीं? गड़बड़ होने पर फिर दंड देने के लिए आ जाता है, नहीं क्या? सब मनुष्य गड़बड़ करता है तो उस समय तो रुकता नहीं है, रोकता नहीं है। वो आर्य समाज के बड़े भारी विद्वान थे पंडित रामचंद्र देहलवी, वो शास्त्रार्थ महारथी थे, शास्त्रार्थ महारथी, यू नो शास्त्रार्थ महारथी। उस जमाने में बड़े बड़े डिबेट्स होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, और बड़े ही जिनके तर्क तर्क भी था उनके पास, ज्ञान भी था, उनका प्रयोग करने का तरीका भी था, बड़े अच्छे व्याख्याता थे। वो इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं कि देखो, एक शिक्षक है, वो अपने विद्यालय में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें उनका भी अपना बच्चा है, स्वाभाविक है उस बच्चे से उनका विशेष लगाव है, घर में भी उसको अलग सा मार्गदर्शन करते हैं, ये तो ठीक है, विशेष कृपा है, ये तो ठीक है। लेकिन जब परीक्षा होने लग जाती है और परीक्षा में जब वो सबको देख रहे हैं, बच्चे अपने अपने कॉपियों में उत्तर लिखाई दे रहे हैं, तो वो घूमते हैं अंदर जाते हुए और कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है देखिए, उनको पता चल ही जाता है। एक अच्छे शिक्षक को देर नहीं लगती कि कोई सही लिख रहा है कोई गलत लिख रहा है। वो घूमते घूमते सबकी तरफ देखते रहते हैं उनके कापियों में क्या हो रहा है क्या नहीं है। वैसे मेरा बड़ा एक विचित्र अनुभव है, मैं जब पहली बार एक कॉलेज में पढ़ाने लग गया तो मुझे ये सहन नहीं होता था कि कोई बच्चे मेरे परीक्षा के जहां पर मैं सुपरवाइज कर रहा हूं वहां कोई नकल करें, ये मुझे सहन नहीं होता। मैं पकड़ता था और खड़ा कर देता था, तो और भले भलों को जैसे भी जो भी है उसको पकड़ता, क्योंकि हम तो नए थे उस एरिया में, वहां जाटों का एरिया था। वो हमारे शिक्षक कहते आचार्य जी काहे को इन जाटों के पल्ले पड़ते हो, छोड़ो ना चक्कर, कोई मार मूर देगा लड़का कुछ करेगा। हमने कहा हम कैसे, सामने दिखाई देता है वो लड़का कॉपी कर रहा है, हम कैसे ना देखें। वो कहते तुम उनकी तरफ क्यों देखते हो, तुम ऊपर देखो। कहते अरे ऊपर कैसे देखे, बावले हो रहे हो। कहते ना ऊपर नहीं देखते, नीचे देखो, उनकी तरफ मत देखो बस। अरे ये सच्ची घटना है बिल्कुल। कहते बस चलो ऊपर देखो, कभी नीचे देखो, कहो ए होशियार कोई नकल मत करना, ऐसे ही कहते रहो बस, अंदाज वेग बात करो भाई। मैं कहा ये कैसे, सामने दिखाई दे रहे बच्चा, वो उधर यूपी में कहा फर्रा फर्रा निकाल के लिखते थे बच्चे, मैं ये फर्रे दिखाई दे रहे हम क्या करें। वो कहते मत देखो फर्रों को, मैं ऐसे कैसे हो सकता है। पंडित रामचंद्र देलवी कहते हैं कि वो जो शिक्षक पढ़ाते थे, सारी कक्षा को पढ़ाते थे, अपने बच्चे को भी पढ़ाते थे, वो परीक्षा के समय में अंदर घूम रहे हैं और उन्होंने देखा चलते चलते अपने बच्चे की तरफ, तो उनकी विशेष जिज्ञासा है कि भाई मेरा बच्चा ठीक भी लिखता है कि नहीं। पहले जमाने के शिक्षक ऐसे हुआ करते थे, वो देखा कि बच्चा गलत हो रहा है, लेकिन मन में बिल्कुल परेशान हो रहे कि ये गलत कर रहा है हमारा पुत्र जो है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, मन में थोड़ा खिन्न हो गए, अरे यार क्या करें, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। वर्ष भर पढ़ाता रहा हूं, बाकायदा पढ़ाता हूं, बार बार पढ़ाता रहा, अब नहीं बोलूंगा। क्यों? ये परीक्षा का समय है। पंडित रामचंद्र देहरवी कहते कि परमात्मा ने सारी व्यवस्था दे रखी है, सब सिखाया समझाया पढ़ाया है, और लेकिन जब करने का समय आता है, जब परीक्षा का समय आता है, तो वो फिर करने देता है। उस समय परीक्षा में हस्तक्षेप करना डिस्टर्ब करना वो ठीक नहीं है। फिर परीक्षा काहे की हुई, परीक्षा में ही आप अगर गाइड करने लग जाओ कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा लिखो, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। तो रामचंद्र देहलवी जी अपने बड़े सुंदर तर्क से इस प्रकार लोगों को समझाते थे कि वो जो हमें नहीं रोकता इसका कारण हमारी परीक्षा चल रही होती है, और फिर ये भी कहते थे कि वो परीक्षा प्यारो हर क्षण चल रही होती है, प्रतिदिन प्रति घंटा और प्रति क्षण हो रही होती है। आपको समझा? हाँ, ये एक बात जरूर है, महर्षि दयानंद कहते हैं जब गलत कार्य कर रहा होता है मनुष्य, तब अंदर से शंका पैदा होती, कोई देख तो नहीं रहा, लज्जा पैदा होती है, भय पैदा होता है। समझ लो ये कहां से आ रहा, ये कहता है उस प्रभु की प्रेरणा है। जो अंदर की आंखें खोल के काम करेगा उस इशारे को समझेगा। क्यों जी? जो नहीं, बिल्कुल जिसने दिमाग को ताले लगा के चाबियां समुद्र में फेंक दी हैं, उसे कछु ना पता चले। तो दूसरी बात, मंत्र कहता है प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो। तीसरी बात, मंत्र कहता है समझते हो तो उसको थोड़ा ग्रहण करो। क्यों जी? आप शब्द, सभी दो शब्द बोलिए, बोलिए एक्यूमुलेट, बोलिए एक्यूमुलेट, दूसरा है असिमिलेट। हम मात्र आज का समाज जो है उसको एक्यूमुलेट करता है, संग्रह करता है, एकत्र करता है, उसको असिमिलेट नहीं करता है। क्यों जी? हम भोजन मात्र एक्यूमुलेट करेंगे, थाली में रख देंगे, खाएंगे नहीं, और खा भी लिया तो एसिमिलेट नहीं करेंगे, तो क्या फायदा है, कोई लाभ उसका? भारत में किसी बच्ची को, मतलब किसी नई नई गृहिणी को जब बच्चा हो जाता है, समझ तो होती नहीं बच्चे कैसे पालने, और बच्चा आ गया गोद में, वो पेट दर्द हो रहा है तो उसको नहीं समझ में आता, इसलिए नानी और दादियों की आवश्यकता पड़ती है ना, या तो सासू माता जी होनी चाहिए, अपनी माता होनी चाहिए, कोई तो बड़ी होनी चाहिए जिनको समझ में आता है ना जी, तो उनके पास ले जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, देखो जी बच्चा बिल्कुल मरियल सा हो रहा है, कुछ उसको शरीर को नहीं लग रहा है। तो जो बड़ी दादी नानी, उन्होंने कहा ये तेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं, कैसे हो रहा है, तो खिलाती पिलाती ना, बहुत खिलाती पिलाती, उसके लगता ही नहीं शरीर को कुछ। अरे लगता नहीं, कैसे लगता नहीं, कुछ इलाज कर ले। क्या इलाज करूं, मैं तो इतना खिलाती हूं, खिला के क्या फायदा है। एसिमिलेट होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए, अपने सिस्टम का एक भाग बनना चाहिए, केवल अक्यूमुलेशन का क्या फायदा, एसिमिलेशन होना चाहिए। वेद मंत्र कहता है जो जानते हो, जो समझते हो, न्याय व्यवस्था को समझ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा एसिमिलेशन होना चाहिए, बहुत थोड़ा ही सही। क्यों, हम इतना सारा खाते हैं, हमारी व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा जाता है, कुछ रस जाता है, उसका फिर रक्त बनता है, उसका फिर आगे सप्त धातुओं की तरफ चला जाता है, क्यों जी, बाकी सारा अन्य पदार्थ तो बाहर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सही एसिमिलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।